आयु की शादी अटेंड करने की जिद में आरव हल्दी लेकर ओबरॉय मेंशन पहुंच गया था। उसने आयु की तरफ नज़र उठाकर तक नहीं था, लेकिन उसका वहां आना हर किसी को खटक रहा था, खासकर तारा को। उसे यही लग रहा था कि आरव आयु और मंथन की शादी में कोई गड़बड़ ना कर दे। उसके और आयु के रिश्ते के बारे में सब जानते थे। तारा ने रस्म के लिए साक्षी से हल्दी का बोल लिया और फिर आरव के पास जाकर दबी लेकिन सख्त आवाज में बोली, वैसे उम्मीद नहीं थी कि तुम शादी अटेंड करने के लिए भी आओगे। हाँ, आप सब तो यही उम्मीद कर रहे होंगे ना कि इस वक्त मैं किसी बार में या अपने घर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होगा, लेकिन मैं क्यों दुखी रहूं जब मुझे धोखा देने वाले लोग यहां बैठकर खुशियां मना रहे हैं, तो सोचा क्यों ना मैं भी उनकी खुशियों में शामिल हो जाऊं। आरव ने तारा की आंखों में देखकर सख्त आवाज में कहा। आरव भले ही आयु की तरफ देख तक ना रहा हो, लेकिन आयु की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। आरव की बातें एक बार फिर उसे उलझन में डाल रही थीं। ये कौन से धोखे की बात कर रहा है और किसने इसे धोखा दे दिया, आयु ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। वहीं साक्षी भी उलझन भरी निगाहों से आरव को देख रही थी। कुछ तो बदल गया था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। आज पहली बार आरव के मुंह से क्लियरली कुछ निकला था और वहां मंथन अजीब बर्ताव कर रहा था। उसके चेहरे पर कहीं भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले कि किसी को कुछ पूछने का मौका मिलता, आरव ने तारा से कहा, मैं मंथन की तरफ से हूँ तो आप मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती। लड़की वाले लड़के वालों का अपमान नहीं करते हैं। आप जाकर अपनी बेटी को हल्दी लगाइए। तारा चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाई, वो आयु के पास चली गई थी। एक एक करके सब रिश्तेदार घर वाले आयु को हल्दी लगा रहे थे। इन सब के बीच आरव ने अभी भी एक बार भी आयु की तरफ नहीं देखा था। अनु, तुम अकेली बैठकर क्या कर रही हो, तुम भी आ जाओ, सिमरन ने उसे आवाज लगाई। अनुष्का उन सबसे अलग दूर अपने मोबाइल में लगी हुई थी। आयु की खुशी के चलते वो चुप थी, पर साथ ही उसे मंथन से इस बात की नाराजगी भी थी कि उसने आयु को सच नहीं बताया था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फ्यूचर में आयु को कोई प्रॉब्लम हो। अनुष्का ने हल्के से सिर हिलाया और आयु के पास जाने लगी। इस दौरान वो आरव के पास से गुजरी तो रुककर उसके चेहरे की तरफ देखा। आरव ने सिर हिलाकर कहा, तकलीफ हो रही है ना अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते देखकर। कितना भी खुश रहने का दिखावा कर लो, पर उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा है कि रस्मी तक अटेंड करने का मन नहीं कर रहा है। उसकी बात सुनकर अनुष्का चौंक गई थी। उसने एक नजर सबकी तरफ डाली, सब आयु के आसपास बिजी थे। अनु ने आरव का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर पास ही के कमरे में लेकर गई थी। वहां आते ही अनुष्का ने आरव का हाथ एक झटके में छोड़ा और उसे धकेलते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे थे तुम अभी? इस घर के लोगों को सच हमेशा बकवास क्यों लगता है? कम ऑन अनुष्का, मुझे तुमसे झूठ बोलने की उम्मीद नहीं थी। तुम मंथन को पसंद करती हो ना, मैं बहुत पहले से इस बात को जानता हूँ, लेकिन तुमने बहुत गलत इंसान से प्यार किया है। वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बहन का प्यार है। मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी वजह से शादी में कोई ड्रामा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये शादी हर हाल में होकर रहेगी, आरव ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। अनुष्का को पहले उसकी बातें सुनकर यही लगा था कि आरव उससे किसी तरह की डील करने वाला है। जब उसने पहले ये सुना था कि आरव ही मंथन का रिश्ता आयु के लिए लेकर आया था, तो उसे यकीन नहीं हुआ था। पर आज आरव की बातें सुनकर वो बाकी लोगों की बातों पर भरोसा करने पर मजबूर हो गई थी। सच जानते हुए भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे कह रहे हो, जबकि खुद की तरफ देखा है? तुम्हारे अंदर तो उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं है। तुम अभी भी आयु से प्यार करते हो ना, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो, अनुष्का ने नम आंखों से कहा। वो दूर बैठी आरव पर ही नजरें जमाई हुई थी। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ। वो मंथन से प्यार करती है, इसलिए मैं जबरदस्ती उसको खुद के साथ नहीं रखना चाहता। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, तब तक मेरे दिल में यही उम्मीद रहेगी कि वो अब तक मेरी है। जैसे मैंने सच को एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे तुम भी कर लो। हम दोनों ने ही गलत इंसान से प्यार किया है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, अनुष्का ने पूछी आवाज में कहा। पहली बार वो आरव की बात से सहमत थी। आरव और अनुष्का एक दूसरे से बात कर रहे थे। बाहर आयु की हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी। बाहर जब आरव और अनुष्का बात कर रहे थे, तब आयु की नजर उन पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही रस्म खत्म हुई, आयु जल्दी से उनके पास आ गई थी। आयु के वहां आते ही आरव ने अपनी नजरें तुरंत दूसरी तरफ कर ली थी। उसे डर था कि अगर वो आयु की तरफ देखेगा तो शायद उसके जज्बात उस पर भारी पड़ जाए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कुछ चल रहा है, आयु ने उन दोनों की तरफ घूरते हुए देखा। कुछ नहीं, बस थोड़ी प्रोफेशनल बातें कर रहे थे, हमारी बात हो गई है, मैं चलती हूँ, अनुष्का ने जवाब दिया। वो आयु की आंखों में देखने के बजाय इधर उधर देखकर हड़बड़ाते हुए बात कर रही थी। इससे पहले कि आयु उससे कुछ पूछती, वो जल्दी से वहां से निकल गई थी। आयु उसे देख रही थी, वो मन ही मन बोली, अनु ने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या आरव और अनु के बीच? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे को कैसे पसंद कर सकते हैं? आरव और अनु दोनों ही आयु से नजरें चुरा रहे थे, इसका मतलब आयु कुछ और ही निकाल रही थी। हालांकि उसके लिए ये हजम कर पाना मुश्किल था कि अनुष्का और आरव एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। वही आरव ने देखा, आयु खोई हुई निगाहों से बाहर की तरफ देख रही थी। उसने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया ताकि उसे आयु का चेहरा ना देखना पड़े।
मुझे अब चलना चाहिए। आरव ने बहाना बनाया और आंखें बंद किए ही वहां से निकलने लगा, लेकिन वो आयु से टकरा गया था। हड़बड़ाहट में आयु का हाथ उसके चेहरे पर जा लगा था और इससे आरव के गाल पर हल्दी लग गई थी। जैसे ही आरव को अपने गाल पर कुछ महसूस हुआ, वो तुरंत आंखें खोलकर उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। बाहर जाकर अपना गाल धो लेना, वो गलती से तुम्हारे गाल पर रस्म की हल्दी लग गई थी, जो तुम जैसे लोगों को कभी समझ नहीं आएगी कि क्या मायने रखती है, आयु ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। What do you mean by मुझ जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी? मैंने क्या किया है? तुमने मेरा फेस खराब कर दिया, ऊपर से मुझ पर चिल्ला रही हो? आरव ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, मैं चिल्ला रही हूँ क्योंकि तुम लोगों की तरह मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है। पहले बता देते तुम्हें अनुष्का पसंद है। मुझे नहीं पता तुम दोनों कब क्लोज आए, पर उसकी वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो ना, आयु ने भारी आवाज में कहा। आरव ने उसकी तरफ आगे बढ़कर देखा और झुंझलाकर तेज आवाज में बोला, तुम्हारी डुप्लीकेट बहन अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तब भी मैं उसे पसंद नहीं करूंगा, और तुम्हारे दिमाग में ऐसे घटिया ख्याल आ भी कैसे सकते हैं? थैंक गॉड ये बात तुमने मेरे सामने कही है, तो एक्स वाइफ समझकर माफ कर देता हूँ, लेकिन गलती से भी अपनी बहन के सामने मत बोल देना वरना वो तुम्हारा खून पी जाएगी। तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आरव, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम क्यों मेरी शादी मंथन से करवाने पर तुले हुए हो? आयु रोते हुए बोली। आयु की आंखों में आंसू देखकर आरव की मुट्ठियां कस गई थी, लेकिन साथ ही उसके पास आयु के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया था।
तुम मुझसे कितना भी भागने की कोशिश कर लो, पर तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मुझे देखने तक की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। अब तो मेरी लगी हुई हल्दी भी तुम्हारे गाल पर लग चुकी है। कब समझ आएगा तुम्हें कि शादी मजाक नहीं होती है? आयु से सकते हुए बोली। उसके आंसुओं और इमोशंस का आरव पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने रुमाल निकालकर अपने गाल की हल्दी साफ की और साक्षी के साथ वहां से चला गया था। दूसरी तरफ अयान और माहिरा हैरान थे कि गौरवी जी ने आरव और आयु को साथ लाने की कोशिश करना बंद क्यों कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने उन दोनों को भी इस मामले में कुछ करने से साफ मना कर दिया था। जब से गौरवी जी को आरव से सच्चाई का पता चला था, तब से उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया था। वैसे भी उनकी शादी को एक साल होने को आया था, इतने टाइम में भी वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए तो उनके हिसाब से उनके रिश्ते को जबरदस्ती बांधने की कोशिश करना बेकार था। माहिरा अयान के साथ बैठी हुई थी। वो दोनों आयु और मंथन की शादी को लेकर परेशान थे, जो जल्द ही होने वाली थी। पता नहीं दादी को क्या हो गया है, ना वो खुद कुछ कर रही हैं ना हमें करने दे रही हैं। हम ऐसे हिम्मत कैसे हार सकते हैं? आरव पागलपन पर उतर आया है। वो नहीं समझता कि एक बार आयु और मंथन की शादी हो गई तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा, माहिरा ने अयान की तरफ देखकर परेशान स्वर में कहा। यही मैं सोच रहा था, अगर आयु इस शादी से खुश होती तो ट्रस्ट मी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ना जाने उसे किस बात की सजा मिल रही है, अयान ने दुखी स्वर में कहा। मेरे पास एक प्लान है, अचानक माहिरा बोली। क्यों ना हम आयु को किडनैप कर ले और उसकी शादी आरव से करवा दे? प्लान अच्छा है, पर आयु को किडनैप करने की जरूरत नहीं है। मामला उल्टा है, भाई को किडनैप करना पड़ेगा। आयु को हम बुलाएंगे तो वो खुद आ जाएगी, अयान ने हंसकर कहा। लेकिन उसे किडनैप करना आसान थोड़ी ना होगा, माहिरा ने मुंह बनाकर कहा। अयान उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। पिछले एक महीने से वो इसी तरह के उल्टे सीधे तरीके सोच रहे थे जिससे आरव और आयु को एक साथ ला सके। आरव और आयु तो भले ही करीब ना आए हों, लेकिन उन दोनों के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया था। पहली बार माहिरा को कोई ऐसा शख्स मिला था जो उसे समझता था, उसकी हर छोटी बड़ी डिमांड को हंसकर पूरा करता था, तो वहीं माहिरा का नखरे दिखाना अयान को अच्छा लगता था। अब तो आयु ही इस मामले में हमारी हेल्प कर सकती है, लेकिन दादी के रहते हम आयु से भी बात कैसे करें, अयान ने मायूस स्वर में कहा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम आयु के फ्रेंड हो, उसने तुम्हें शादी में इन्वाइट किया ही होगा, तो क्यों ना हम शादी अटेंड करने जाएं? इसी बहाने हम आयु से भी मिल लेंगे और हो सकता है वो हमारी हेल्प करे, आखिर उसे भी तो आरव चाहिए, माहिरा ने झट से कहा। इस बार तुम्हारा प्लान अच्छा है, पर एक प्रॉब्लम है, मुझे पता चला है कि भाई भी वहीं पर है, हमें देखते ही वहां से निकाल देंगे, अयान ने जवाब दिया। उनके हर प्लान में कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। और वो हमें कैसे निकालेगा? हम आयु की साइड से शादी अटेंड करने जाएंगे और वो मंथन की साइड से है। आयु तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारे पास तो अच्छा खासा बहाना भी है, ऊपर से गलत वो है, कौन अपनी वाइफ की शादी अटेंड करने जाता है, माहिरा ने उसे समझाया। अयान ने तुरंत उसकी बात पर हामी भरी। उन दोनों ने हाई फाइव किया और फिर गौरवी जी को बहाना बनाकर आयु की शादी अटेंड करने के लिए लुधियाना पहुंच गए थे। समय उनके हाथ से निकला जा रहा था। देखते ही देखते शादी का वक्त करीब आ रहा था और आज आयु की मेहंदी की रस्म थी। आरव अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, ना तो वो आयु का चेहरा देख रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। अगर वो ये शादी अटेंड कर रहा था तो उसका एक ही कारण था कि कोई इस शादी में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। देखते हैं अयान और माहिरा अब क्या कर पाते हैं। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।